अध्याय 42 व्यवस्था का दोहराया जाना। यह अध्याय व्यवस्था विवरण 4 से 6 आयत 28 पर आधारित है। प्रभु ने मूसा को बताया कि कनान पर स्वामित्व का नियुक्त समय पास ही था, और जब वृद्ध भविष्यद्वक्ता यर्दन नदी और प्रतिज्ञा के देश पर दृष्टि डालती ऊंचाइयों पर खड़ा था, उसने गहरी रुचि से अपने लोगों की धरोहर को निहारा। क्या यह संभव था कि कादेश में उससे हुए पाप के कारण उसके विरुद्ध दिया गया दंडादेश रद्द किया जा सके? उसने आग्रह पूर्वक विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। व्यवस्था विवरण 3 आयत 24 से 26। उसे उत्तर मिला, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार जाने न पाएगा। व्यवस्था विवरण 3 आयत 27। बिना कुरकुलाए मूसा ने परमेश्वर के आदेश के आगे समर्पण किया, और अब उसको इज़राइल की अधिक चिंता थी। उनके कल्याण के लिए जिस रुचि को वह महसूस करता था, वैसा कौन महसूस करेगा? भरे हृदय से उसने फिर प्रार्थना की, यहोवा, जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिन चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। गिनती 27 आयत 16-17। यहोवा ने अपने दास की प्रार्थना को स्वीकार किया और उत्तर आया, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजार याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने आज्ञा दे, और अपनी ओर से उसे सम्मानित कर, जिससे इसराइलियों की सारी मंडली उसका कहा माने। गिनती 27 आयत 18-20। यहोशू ने चिरकाल से मूसा की सेवा टहल की थी, और चूंकि वह बुद्धिमत्ता, योग्यता और विश्वास का धनी था, उसे मूसा का उत्तराधिकारी चुना गया। मूसा द्वारा उस पर हाथ रखने से और साथ ही इतना प्रभावशाली कार्यभार सौंपने से यहोशू को विधिवत इसराइल के अगवे के रूप में अलग किया गया। उसे वर्तमान शासन में भी भागीदार होने की अनुमति मिली। यहोशू के संदर्भ में परमेश्वर का कथन मूसा के माध्यम से मंडली में पहुंचाया गया, और वह एलियाजार याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजार उसके लिए यहोवा से ऊरीम की आज्ञा पूछा करे, उसके कहने से वह जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। गिनती 27 आयत 21-23। इसराइल के सदृश अगवे के पद को त्यागने से पूर्व मूसा को निर्देश दिया गया कि वह मिस्र से उनके छुटकारे का और बीहड़ में उनकी यात्राओं के इतिहास को उनके सम्मुख दोहराए और सिने पर दी गई व्यवस्था को भी दोहराए। जब व्यवस्था दी गई, वर्तमान की मंडली के कुछ ही लोग अवसर की महिमामय धार्मिकता को समझने के लिए वयस्क थे। वे शीघ्र ही यर्दन को पार कर प्रतिज्ञा के देश का स्वामित्व लेने को थे, और परमेश्वर उनके सम्मुख व्यवस्था का अधिकार प्रस्तुत करने और आज्ञाकारिता को समृद्धि की शर्त के तौर पर आदिष्ट करने को था। मूसा लोगों के सम्मुख अंतिम चेतावनियों और उपदेश देने को खड़ा हुआ। उसका चेहरा पवित्र प्रकाश से कांतिमान था। उसके बाल आयु के अनुसार सफ़ेद हो चले थे, लेकिन उसका शरीर सीधा था। उसकी मुखाकृति स्वास्थ्य की अक्षय प्रबलता को अभिव्यक्ति करती थी, और उसकी दृष्टि स्पष्ट और पैनी थी। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, और संवेदनशील होकर उसने उनके सर्वशक्तिमान रक्षक के प्रेम और दया को प्रस्तुत किया। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और एक बलवंत हाथ और बढ़ाए हुए हाथ और अत्यंत भयानक कार्यों द्वारा काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए। ये सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। व्यवस्था विवरण 4:32-35। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़ थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। व्यवस्था विवरण 7:7-9। इज़राइल के लोग अपने सारे कष्टों का आरोप मूसा पर लगाने को तत्पर थे, लेकिन अब उनका ये संदेह कि मूसा घमंड, महत्वाकांक्षा या स्वार्थ से नियंत्रित था दूर हो गया और वे विश्वास से उसकी कही बातें सुनते रहे। मूसा ने सच्चाई से उनके सम्मुख उनके दोष और उनके पितरों के पापों को रखा। वे प्रायः भीड़ में अपनी लंबी यात्रा के कारण अधीर और उपद्रवी महसूस करते थे, लेकिन कनान पर आधिपत्य के विलंब के लिए यहोवा उत्तरदायी नहीं था। वो उनसे अधिक दुखी था कि वो उनको प्रतिज्ञा के देश का तत्काल स्वामित्व नहीं दिला सका और सभी के सम्मुख अपने लोगों के छुटकारे में अपनी प्रबल शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सका। परमेश्वर में अविश्वास के कारण, अपने अधर्म और घमंड के कारण वे कनान में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं थे। वे उन लोगों का कदाचित प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे जिनका परमेश्वर यहोवा, क्योंकि वे परमेश्वर के पवित्र भले और उदार चरित्र के धनी नहीं थे। यदि उनके पूर्वज परमेश्वर के अध्यादेशों का पालन करते, उसके निर्णयों के नियंत्रण में, विश्वास में परमेश्वर के निर्देशन को समर्पित होते, तो वे बहुत पहले एक समृद्ध, पवित्र और खुशहाल जाति के रूप में कनान में बस गए होते। समृद्ध देश में विलंबित प्रवेश से परमेश्वर का अपमान हुआ और पड़ोसी देशों की दृष्टि में उसकी महिमा घट गई। मूसा ने, जो परमेश्वर की व्यवस्था के मूल्य और विशेषता को समझता था, लोगों को आश्वस्त किया कि किसी भी राष्ट्र के पास ऐसे ज्ञानपूर्ण धर्मी और उद्धार नियम नहीं थे जैसे कि इब्रियों को दिए गए थे। सुनो, उसने कहा, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना, क्योंकि अन्य देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। व्यवस्था विवरण 4:5-6। मूसा ने उनका ध्यान उस दिन की बातों की ओर आकर्षित किया जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे और उसने इब्री सेना को चुनौती दी, देखो कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा जब हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसी कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। आज इज़राइल को दी गई चुनौती को दोहराया जा सकता है। परमेश्वर द्वारा प्राचीन काल के उसके लोगों को दिए गए नियम पृथ्वी के सबसे अधिक सभ्य जातियों के नियमों से अधिक विवेकी, बेहतर और मानवीय थे। राज्यों के नियमों में अपरिवर्तित हृदय के आवेग और दुर्बलता के चिन्ह है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था पर पवित्रता की छाप थी।
मूसा ने घोषणा की, तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी निज भाग ठहरो। जिस देश में वे शीघ्र ही प्रवेश करने वाले थे और परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता की शर्त पर जो उनका होने वाला था, उसका वर्णन उनके लिए इस प्रकार किया गया। और इन शब्दों ने किस तरह इसराइलियों के हृदयों को विचलित किया होगा जब उन्होंने यह याद किया कि जिसने उस समृद्ध देश की आशीषों को इतने उत्साहपूर्वक तरीके से चित्रांकित किया था, उसे उनके पाप के कारण अपने लोगों की मीरास में भागीदार होने से बाहर कर दिया गया। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो मिस्र देश के समान नहीं है जहां से निकलकर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत के जैसे अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ी और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है जल की नदियों का, और तराइयों और पहाड़ों से निकले गहरे सोतों का देश है, और वो गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीर और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में तुम पेट भर खाना खा सकोगे और उसमें तुझे किसी चीज की घटी न होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा। वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। व्यवस्था विवरण 8 आयत 7 से 9, 11 आयत 10 से 12। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वो दे और तू खाकर तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूल जाओ जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जलन रखने वाला ईश्वर है। यदि वे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करेंगे तो फिर, मूसा ने कहा, जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे। व्यवस्था के सार्वजनिक पूर्वाभ्यास के बाद मूसा ने परमेश्वर द्वारा उसे दिए गए नियमों, विधान और दंडाज्ञाओं को लिखने का कार्य समाप्त किया और बलिदान संबंधी विधियों को भी लिखा। जिस पुस्तक में इन्हें लिखा गया उसे योग्य अधिकारियों के प्रभार में एक तरफ रखा गया। फिर भी महान अगुवे को डर था कि लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। एक रोमांचक और उत्कृष्ट संबोधन में उनके सम्मुख उन आशीषों को रखा जो आज्ञाकारिता की शर्त पर उनकी होती, और उन श्रापों से भी अवगत कराया जो आज्ञा उल्लंघन के कारण उन पर पड़ते। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य तेरी टोकरी और तेरा भंडार, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। तेरे भंडारों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे, और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और श्राप का कारण समझा जाएगा, और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा, और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन नहीं पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा। लेकिन यहोवा तुझे एक कांपता हुआ हृदय देगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा, और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा, और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा क्योंकि तेरे मन में भय बना रहेगा, और तेरी आंखों को जो कुछ दिखाता रहेगा उसके कारण तू भोर को आह भर के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आह भर के कहेगा
भोर कब होगी। प्रेरणा के आत्मा से सदियों में झांकते हुए मूसा ने इज़राइल के राष्ट्र के रूप में पराजित होने और रोमियों की सेना द्वारा यरूशलेम के विनाश के दृश्यों को चित्रांकित किया। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा, जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे, न बालकों पर दया करेंगे। सदियों पश्चात तीथुस के नेतृत्व में यरूशलेम की घेराबंदी के समय लोगों की दर्दनाक पीड़ा और राष्ट्र के विनाश का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहां तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा। वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देशों के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहें जिन पर तू भरोसा करेगा गिर न जाएं। तू अपने जिन जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा, क्योंकि घिर जाने और उस संकट में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे डालेंगे, और तुम्हारे मध्य जो स्त्री यहां तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के कारण भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राणप्रिय पति और अपने जने हुए बच्चों को कर दृष्टि से देखेंगी, क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं को घटी के मारे उन्हें छुप कर खाएंगी। मूसा ने इन प्रभावशाली शब्दों में अपना उपदेश बंद किया। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और तेरे दिनों की लंबी अवधि यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने तेरे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू वास करेगा। व्यवस्था विवरण 30 आयत 19-20। इस सत्य से सभी को और अधिक प्रभावित करने के लिए महान अगुवे ने इसे पवित्र छंदों में समाविष्ट कर दिया। यह गीत केवल ऐतिहासिक ही नहीं भविष्य सूचक भी था। इसने बीते दिनों में अपने लोगों के प्रति उसके अद्भुत तरीकों या उपायों का वर्णन तो किया ही, वरन भविष्य की महान घटना, महिमा और सामर्थ्य में मसीह के दूसरे आगमन के समय निष्ठावानों की निर्णायक विजय का भी पूर्वाभास दिया। लोगों को इस काव्यात्मक इतिहास को स्मृति के सुपुर्द करने और अपनी संतान और संतानों की संतान को सिखाने का निर्देश दिया गया। मंडली से अपेक्षा की जाती थी कि वे इस गीत को आराधना के लिए एकत्रित होने के समय गाएं और प्रतिदिन के कार्य करते समय भी दोहराते रहें। अभिभावकों का यह कर्तव्य था कि वे अपने बच्चों के कोमल मन पर इन शब्दों की छाप छोड़ें, ताकि वे इन्हें कभी भी न भूलें। इसराइलियों को विशेष रूप से परमेश्वर की व्यवस्था के अभिभावक और रक्षक होना था, इसलिए उसके सिद्धांतों की महत्ता और आज्ञा पालन की आवश्यकता को विशेष रूप से उनको और उनके द्वारा उनके बच्चों और बच्चों के बच्चों को समझाया जाना था। अपने नियमों के संदर्भ में यहोवा ने आदेश दिया, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आने वाले समय में जब बच्चे उनसे पूछे, ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अभिभावकों को उनके लिए अपनाए गए परमेश्वर के उदार व्यवहार व तरीकों का इतिहास दोहराना था, किस तरह प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिलाया कि वे उसकी आज्ञा का पालन कर सके। उन्हें अपने बच्चों को यह भी बताना था, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस प्रकार सदैव हमारा भला हो और वो हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों का पालन करेंगे तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा।